What is the way of this? Jealousy can. What is the way of that? Jealousy can. What is the way of this? Jealousy can. Tariqa. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے فضل سے اس کے کرم سے اس کی عنایت سے اس کے احسان سے الحمدللہ رب العالمین ماہ رمضان مبارک کی بابرکت سعادتیں اور یہ سعادتیں ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کوششوں کو ثمرآور فرمائے ہماری ان کوششوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما کر ہمیں ماہ رمضان کی حقیقی برکات نصیب فرمائے اس پروگرام کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اسلام کے بتائے ہوئے خوبصورت اور اچھے سلیقے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے پاکیزہ انداز یہ انشاءاللہ الکریم جاننے کی کوشش کریں گے نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں تو یہ مختلف جو بولیے ڈائمینشنز پر اور ایک لائٹر نوٹ پر بھی اور کچھ سیریس موضوعات پر بھی انشاءاللہ الکریم ڈسکشن پروگرام میں شامل رہے گی پہلا سوال سیدی آپ یہ بتائیں یہ پروگرام وے آف یعنی طریقہ جو پروگرام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور پورے اس کو لے کے چلیں گے سسٹم کے ساتھ اس کا مین مقصد کیا ہے آپ کیا ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کیا بتانا چاہتے ہیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین سب سے پہلے تو یہ نیک عمل 72 کا رسالہ تحفے میں قبول فرمائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماہ رمضان ماہ نیک عمل کے طور پر جی منانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے
سبحان اللہ
نیکی کی طرف لانے کا
سبحان اللہ
دنیا میں کئی طرح کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ طریقہ کار دیا جاتا ہے کسی کا ویٹ کم ہے تو طریقہ دیتے ہیں کہ ویٹ بڑھا لیجئے اس کا طریقہ ہے کسی کا ویٹ زیادہ ہے تو اس کو کسی طریقے کے تحت ویٹ کم کروایا جائے گا
صحیح.
اور طریقہ ہے کھانے پینے کا بھی کوئی طریقہ ہے
صحیح.
تو زندگی یہ طریقوں کے ساتھ چلتی ہے آپ اس کو شرعی طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو معاشرتی طور پر دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ میڈیکلی طور پر دیکھ سکتے ہیں
صحیح
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام فرمانے کا بھی ایک طریقہ تھا
صحیح
ہے نا
بالکل
اچھا اب اسی طریقے کو اگر آج آپ میڈیکل سے بات کرتے تو میڈیکل کہتا ہے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ
صحیح.
یہ طریقہ ایز اے میڈیکل پوائنٹ آف ویو پر بہت زیادہ مطلب کہ وہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے
جی.
اسی طرح لوگ کھانا کھاتے تو کھانا کھانے کا بھی ایک طریقہ ہے آج میڈیکل اس کو پروف کرتی ہے چبانے کے تعلق سے یعنی کہ آپ منہ میں نوالا ڈالیں دھکا مارے اندر چلا جائے گا نوالے نے کیا کرنا ہے اس کی کون سا مطلب کہ آپ کو گلے کے کونے پہ آ کے کہنا ہے کہ نہیں ابھی تھوڑا کام کا باقی ہے میں ابھی اندر نہیں جاتا لیکن ایک طریقہ ہے اور آج میڈیکل اس کو پروف کرتی ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح چباتے ہیں تو ایک لعاب آپ کے منہ میں پیدا ہوتا ہے جو ایک ہضم کرنے کے لیے آپ کو مددگار وہ ثابت ہوتا ہے وہ ہاضم لعاب اس کو کہتے ہیں
جی.
الغرض بچہ جب لکھنا شروع کرتا ہے تو ایک طریقے کے ساتھ اس کو لکھوایا جاتا ہے
ٹھیک
باقاعدہ انگلش کی لائنیں بنی ہوئی ہیں
جی
اسمال لیٹر کو اور بڑے لیٹر کو اسی طرح لکھنا ہے
بالکل ایسا ہی
ہر چیز طریقے کے ساتھ ہے کھانا پینا سونا ایون کہ آپ موبائل فون لیتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ ملتا ہے جس کے اندر ہاؤ ٹو یوز
ایسا ہی
طریقہ زندگی اپنے طریقے کے ساتھ گزاری جاتی ہے کاروبار اپنے طریقے کے ساتھ کیا جاتا ہے نکاح ایک طریقے کے مطابق کیا جائے گا مطلب اس اور جو طریقہ اسلام و دین ہمیں سکھاتا ہے میں بہت پرانی بات اگر میں آپ سے شیئر کروں تو یو کے کا میرا سفر تھا اور مختلف مقامات پر میرے بیانات تھے میں یو کے تقریباً 2013 سے جا رہا ہوں और काफी सालों तक वहां आना जाना रहा है, कोविड में नहीं जा सके थे, तो उस वक्त एक टॉपिक तैयार किया था, वाई इस्लाम। जैसे अभी एक दावत इस्लामी का प्रोग्राम चला ना, वाई दावत इस्लामी,
जी
मैं उस वक्त एक टॉपिक तैयार किया था वाई इस्लाम। उसमें इतने मौजूदात अल्लाह की रहमत से तैयार किए थे कि आखिर इस्लाम क्यों। तो इस्लाम ने जो उसके कई और डायमेंशन थी उस मौजू के अंदर, लेकिन उसका ये भी था कि इस्लाम एक तरीका देता है, एक
सुभान
तौर तरीका जिसको आप कहते हैं,
जी
एक अंदाज देता है जिंदगी गुजारने का। क्यों, कुरान खुद जब हमें इस बात की दावत देता है, ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे ही दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब ये दाखिल होना सिर्फ नमाज की हद तक या रोजे की हद तक या जक़ात की हद तक या हज की हद तक तो है नहीं।
जी
तब इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए, तो अब कुरान से ही अगर हम अर्ज करें कि कुरान अब पूरे के पूरे दाखिल होने का तरीका क्या है, तो
जी
कुरान आगे एक मकाम में हमारी रहनुमाई फरमाता है, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना,
सुभान अल्लाह
तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन पैरवी है, नमूना अमल है, आपके रोल मॉडल, आप इनकी जिंदगी के मुताबिक आप जिंदगी गुजारें, तो ये जिंदगी गुजारने वाला इस्लाम में पूरे के पूरा दाखिल हो गया।
सुभान अल्लाह
अच्छा, अब अंदाज तो और कुछ भी है, तो वो है ना, ये तुम्हें ये हबीब जो तुम्हें दें
जी
वो ले लो, जिस
जी
चीज से रोके उसे रुक जाओ। तो यूं अगर आप हम कुरान करीम की जैसे बात करते हैं, अच्छा इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मुझे याद आ रहा है कि मैं तुम्हें जिस चीज का हुक्म दू या जिस चीज के करने का कहूँ उसे ताकतवर कर लिया करो, और जिस चीज से रोको उससे बस रुक जाओ,
सही
उसे रुक जाने का। यानी कि अच्छा नमाज, खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह मुझे नमाज पढ़ता देखते हो वैसे नमाज पढ़ो, तरीका बताया गया नमाज ऐसे कर, वुजू एक तरीका है,
सही
गुसल एक तरीका है,
सही
इवन के खाना पकाना एक तरीका है। यार खाना पका कर दे दो, अब वो खड़ी हो जाए देगची के ऊपर चूल्हा जलाकर और जो समझ में आवे डालती है, लेकिन हर चीज का एक तरीका है और हर चीज की एक रेसिपी है, हर चीज का एक अपना अंदाज है जो उस चीज को बेहतर कर। तो हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है तरीका, वे ऑफ, किसी काम को करना कैसे है।
सही
अच्छा, हम कई काम करते हैं मगर हम देखते हैं कि हमें उसे कामयाबी नहीं मिलती, हम उसे पूरा कर ही नहीं पाते, या करते हैं तो हमें इससे बाकायदा नुकसान हो जाता है। तो ऐसा भी होता है कि आपका वो काम करना तो दुरुस्त था मगर उसका तरीका दुरुस्त ना था।
सही
तो तरीके की अहमियत है। खुद अगर हम कुरान करीम से अगर इस बात को मजीद समझने की कोशिश करें, तो कुरान करीम में दो ऐसे बातें बयान हुई हैं, एक है तिजारत के तौर पर और एक है सूद के तौर पर,
जी
ठीक है। और कुरान तिजारत को, बे को हलाल करता है और रिबा को हराम करता है। अच्छा अब नतीजा देखें तो दोनों में अर्निंग है,
ऐसा ही
आप तिजारत करें तब भी आपको 2 पैसे आ रहे हैं,
जी
सूद खाता है बंदा तभी उसमें इसको अर्निंग तो है, पैसे तो आ ही रहे हैं,
ठीक।
लेकिन तिजारत का तरीका जुदा और सूद का तरीका जुदा है, तरीके के बदलने को। यानी कि कुछ बरसों पुरानी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि
जी
यही दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्तियाने कराम के साथ हमारी जो गोल्ड मार्केट है, सोना जो मतलब गोल्ड का बिजनेस करते हैं, तो सोना बाजार भी अमूमन कहलाता है, सोन बाजार भी कहलाता है, और ज्वेलर्स वगैरह जो होते हैं इनका एक अच्छा खासा एक हिस्सा, तो वो आए थे तो चंद नशिस्तें हुई, तो नतीजा निकला कि तरीकेकार अगर बदल जाए तो सूद में पड़ जाते हैं, तरीकेकार ये करे तो हलाल में पड़ जाते हैं। क्योंकि तो गोल्ड का काम है समन हकीकी है,
ऐसा ही
इसके एक अपने प्रिंसिपल से, इसका एक अपना रूल है, एक अपना इसका उसूल है।
बिल्कुल
तो अच्छा अब यही चीजें, और मैं चूंकि मैं खुद एक बिजनेस फील्ड से रहा हूँ,
सही
तो एक तरीका तब्दील कर देने से आप हराम में पड़ जाते हैं,
जी
तरीका तब्दील कर देने से आप हलाल में पड़ जाते हैं। इसलिए
सही
मैं हमेशा बिजनेस कम्युनिटी को मैं एडवाइस करता हूं कि काइंडली आप मुफ्ती साहब से एक बार अपने कारोबार की डिस्कशन जरूर कर लें। आपको लगेगा यार मना कर देंगे, आपको तरीका बता देंगे कि आप इसको यूं नहीं, यूं कर लो, तरीका चेंज कर लें, आपकी चीज दुरुस्त हो जाती है। अच्छा ये सिर्फ कारोबार या सिर्फ इस तरह नहीं है, आप खुद, मैं अपने नाजरीन में जो पेरेंट्स हैं उनको मैं बताता हूँ कि आप अपने बच्चों को बताओ बेटा इस तरीके के साथ करो, आप गाड़ी भी एक तरीके से चलाते हैं, खाना भी एक तरीके से पकाते हैं, राइटिंग भी एक तरीके से करते हैं, हर चीज में आप खुद अपने बच्चों को बेटा कोई किसी का अच्छा बातों का वाले साहब जो जज्बाती किस्म के होते हैं या नहीं बेटा मान रहा होता तो वुमन एक जुमला वालिदैन के मुंह पर होता है तेरे को कोई तरीका है या नहीं है कोई तरीका है या नहीं है तो बेटा बोलता है क्या तरीका वो सही तो कर बेटा ये सही नहीं है इस तरह नहीं होता
सही
तो जिंदगी को तरीके के मुताबिक तरीका एक तरह से कायदा भी है
जी
तरीका जो एक तरह से कायदा है कि इस कायदे के तहत जिंदगी गुजारे और याद रखिएगा कायदे में फायदा है
वाह वाह वाह
ये याद कर लिया
सुभान अल्लाह
जो कायदे में है वो फायदे में है जो कायदे से हट गया फिर वो अपने नुकसान को गिनती करना शुरू कर दे
अल्लाह महफूज फरमाए ऐसे आज की सिचुएशन जो हमारी फ्रेंड्स डेरियो चल रहा है इसके साथ मौजू को जो है वो अगर रिलेट करें तो आज जिस तरह एक होश रुबा और एक यूं बोले कि तूफानी महंगाई की लहर मौजूद है तो इसमें सर्वाइवल जो है ये कैसे किया जाए इसका तरीका क्या होगा
अल्लाह बहुत ही बर्निंग इशू है महंगाई का और तसल्ली देना आसान है सर्वाइव करना मुश्किल है मगर तसल्ली दे के चारा भी नहीं होता
सही हो गया
मतलब बिल्कुल मौत के किनारे पर भी जो एक तरह से मरीज होता है तो डॉक्टर उसको भी तसल्ली देता है कभी डॉक्टर उसको कान में भी जाके नहीं बोलता कि भाई सबके सामने तो ठीक है मगर अब तू है एक आध घंटे का मेहमान तो मेरे को सुनते ही वो चला जाएगा एक घंटा कौन मतलब के एक आध दिन का तो तसल्ली जो है ना ये खुद दी जाती है मगर बातों का तसल्ली के साथ साथ ऐसी सूरत हाल होती है कि सिर्फ तसल्ली नहीं होती थोड़ा सा तरीक़ेकार तब्दील कर दिया जाए तो भी बेहतरी आ जाती है आप हमारी हर बात से मुत्तफिक हो ये ज़रूरी नहीं है कई कुरान और हदीस की वजाहत में हमने खुदा ना खास्ता कोई गलती की है तो डेफिनेटली आप हमारी इस्लाह कीजिएगा इंशाल्लाह हमारे अल्लाह ने चाहा तो आप हमें इस्लाह कबूल करता पाएंगे
आपकी आर्ग्यूमेंट से
एक अपनी सोच होती है एक अपना तज्जिया होता है और वो एक अपनी अपनी राय होती है तो उससे यकीनन आप इख्तलाफ राय रख सकते हैं
उसको वेलकम करेंगे
इंशाल्लाह ताला नहीं इख्तलाफ राय में ये होता है कि लोग गलत होना जरूरी नहीं है लोग मुख्तलिफ होते हैं
ठीक
मुझसे इख्तलाफ करने वाला या मैं किसी से इख्तलाफ करूं तो इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि मैं जिससे इख्तलाफ करता हूं वो गलत
ही है ठीक हो
सही है मैं मतलब मुख्तलिफ सोच है हम दो दोस्त चाहते हैं कपड़ा खरीदने के लिए अब मुझे जो कलर पसंद है जरूरी है उसी को पसंद आ जाए राइट हम दो दोस्त जाते हैं इत्र खरीदने के लिए जो खुशबू मुझे पसंद है जरूरी है उसको भी आ जाए
ऐसा ही
जरूरी नहीं है अच्छा कोई आवाज है जो आपको अच्छी लगती है जरूरी नहीं है कि मुझे भी अच्छी लगे तो अच्छा हम होटल में जाते खाते हैं या घर में खाते हैं तो जो खाना आपको पसंद आएगा जरूरी वो टेस्ट मुझे पसंद आए याद रखिएगा ये इंसान को अल्लाह पाक ने जो पैदा फरमाया तो ये सबकी नोयतें अलग अलग हैं अगर ये ना होता तो इतने सारे इत्र क्यों बने भैया हर अच्छा अब वो एक बिल्कुल मुसलत करने आप यही खरीदे बहुत अच्छी इत्र अरे भाई आपको अच्छी लग रही है
तो
मुझे नहीं मतलब कि वो मेरा एक अपना फ्लेवर है मेरी एक अपना टेस्ट है मेरा एक अपना मामला है कि मुझे ये परफ्यूम या मुझे ये खुशबू या मुझे चीज अच्छी तो ना ठीक है वो खुशबू है खुशबू होने में इख्तलाफ नहीं है पसंद ना पसंद का इख्तलाफ है कोई भी इसको ये नहीं कह रहा कि बदबू है यानी खुशबू को बदबू नहीं कह रहा
सही है
अच्छा कोई बदबू को खुशबू भी नहीं कह रहा
सही है
लेकिन अब खुशबू का पसंद होना ना पसंद होना ये तो जुदा है ना अब मैंने एक बात की तो आप मेरी बात को ये तो नहीं कह सकते कि तुमने खुशबू को बदबू कह दिया बदबू खुशबू कह दिया तो इख्तलाफ इस तरह की चीजों में हो जाता है इस पर कोई हर्ज नहीं है मेरे किसी कहने से किसी को इख्तलाफ हो सकता है तो वो अपनी एक राय रखता है
ठीक
अच्छा मैं अपनी राय आप पर मुसल्लत करूं ये तरीका दुरुस्त नहीं है
सही
आप अपनी राय मुझ पर मुसल्लत करें ये तरीका दुरुस्त नहीं है हाँ दुरुस्त क्या है कि मेरी राय अगर शरीयत से हटकर है तो डेफिनेटली मुझे मानना पड़ेगा
ठीक
और आपकी राय अगर शरीयत से हटकर है तो आपको मानना पड़ेगा लेकिन दोनों की राय में कोई शरई मामला नहीं है एक अपनी अपना थॉट लेवल है थॉट प्रोसेस होता है तो इसमें डेफिनेटली ये कोई वो चीज नहीं होती है हर चीज आपकी मेरी पसंद की हो या मैं हर बात आपकी सोच और अक्ल के मुताबिक ही करूं अगर ये मामला जो मैंने अभी जो दो तीन मिनट के अंदर जो हमने बात की है, अगर ये बात समझ में आ गई ना हम सब की, यकीन माने घर अमन के गहवारे बन जाएंगे,
जिंदगी आसान हो जाएगी,
जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है भाई, अब भाई मैंने तो आपको अपनी बात की ना, तो आप लड़ क्यों रहे मुझसे? आप अपनी राय रखे, मैं अपनी राय रखता हूँ। अब अपना नजरिया रखे, मैं अपना नजरिया रखता हूँ। ये एक जनरल बात कर रहा हूँ, एक शरई राय है, एक शरई नजरिया है, शरी इतकादात है, उसकी उसका टॉपिक अलग है। वो तो जो शरीयत मुतारा ने हमें जिसको इख्तियार करने का कहा है वही इख्तियार करना है, लेकिन एक पर्सनल लाइफ के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने कहा कि थोड़ा सा ये भी एक अर्ज कर दूँ कि अगर मेरे तमाम देखने सुनने वाले जो भी हैं, आप सबका एक अलग अलग अंदाज होगा। कोई डिश आपको पसंद आ गई होगी, आपके बच्चे को पसंद नहीं होगी, कहते अम्मी यार ये क्या बना दिया, तो अब बोलते हैं बेटा भी इससे अच्छा क्या बना कर देंगे तुमको। ठीक है, फिर ज़्यादा बोलेगा, बोलेगा ठीक है बेटा फिर खुद ही बना कर दिखा दो क्या अच्छा बनता है। तो अपना अपना एक सोच, अपना अपना अंदाज होता है, तो इसमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, इसमें नाराज होने की भी कोई बात नहीं है। सच्ची बात नाराज आ गया यार, इससे ये मेरी से मुत्तफिक ही नहीं होता। अच्छा, मुशावरत की भी खूबी है, मशवरा घर में भी करना चाहिए, ये बात भी है। अब घर में तो घर का ही मशवरा करेंगे, बेटा क्या कहते हैं, बच्चा बेटी आप क्या बनती है, आप क्या कहती है, तो आपस का मशवरा कर लेना चाहिए। लेकिन मशवरा जो आप लोग कर रहे हैं उसमें कोई एक तो होगी ना अथॉरिटी जो मशवरे को कंक्लूड करेगी,
सही है,
जो उसका एक नतीजा निकालेगा, बोलेगा नतीजा भी मैं निकालूँ। तो घर का हेड, घर का बड़ा ही होता है, जिसे उमूमी तौर पर हम वालिद कहते हैं, या यही घर के रिजाल कवामून अला निसा, ये सिस्टम है घर का, घर एक इदारा है, उसका नाजिमुल उमूर, उसका जो एडमिन है मैन, जो उसका एच ओ डी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं, या एच ओ एच कह ले हेड ऑफ द हाउस अगर आप उसको कह ले, तो हेड ऑफ द होम कह ले, चले होम में तो आप यहाँ रहते हैं, अगर वो कह ले तो वो अपने घर के ये मर्द ये बड़े हैं। ठीक है, जो हों, अब ये मुस्कुरा रहा होगा, ये बैठ गए, हाँ बोलो क्या बोल रहे, नहीं मानते ना मेरी, देखो ये बोल रहे, तो ये नहीं है। आप आज जी इख्तियार करें, आपको घर का बड़ा बनाया गया है। ठीक है,
ऐसा भी इस मौजू पर दो बातें हैं, लेकिन वो मैं फिर
लेकिन हम महंगाई की तरफ आते हैं, महंगाई की तरफ आते हैं, तो मैं असल में ये सारी चीजें आएंगी ना, तो ये महंगाई का मामला हल करना आसान हो जाएगा।
ठीक हो, बराबर,
ठीक है, कोई किताब से पहले कोई थोड़ा सा मुकदमा होता है ना,
सुभान अल्लाह,
तो आपस के मशवरे करने से, फिर किसी एक को बड़ा बना लेने से फैसले करने आसान हो जाते हैं, वरना फिर ये बोले मेरी चले, ये बोले मेरी चले, ये बोले मेरी चले। तो मुशावरत का एक फायदा ये होता है कि सबकी राय आती है, और राय मुख्तलिफ आती है, सबकी एक ही जैसी राय बहुत मुश्किल होती है, तो सबकी राय मुख्तलिफ होती है, बाज़ों का सारे मशवरों को मिलाकर कोई एक अच्छा खूबसूरत सा नया मशवरा तख्लीक पाता है। और समटाइम ये होता है कि किसी एक या दो की राय, एक या दो का मशवरा, वो ज़्यादा अक्ल के करीब होता है। एक सलाहियत है लोगों की, एक सलाहियत का वर्ड है, एक क्वालिटी होती है किसी मर्द में, किसी लोगों में, उसका नाम है साहिबुर राय, स्वाद से है, साहिबुर राय, दुरुस्त राय देने वाली शख्सियत होती है वो, यानी ये शख्स वो है जिसकी जो मशवरा, जिसकी जो राय, ये फवाब के करीब होती है, यानी फवाब के करीब होती है, यानी दुरुस्त के करीब होती है, ये उमूमी तौर पर ऐसे मशवरे, ये एक क्वालिटी है लोगों की कि जो इस तरह के लोग पाए जाते हैं। अगर कहीं आपको ऐसा शख्स मिलता हो, उससे ज़रूर ताल्लुकात बनाकर रखिएगा, और उससे राय लें, ये उमूमी तौर पर अच्छी राय और अच्छा मशवरा देने में इनकी एक्सपर्टीज होती है, माहिर होते हैं। अजय कैसे माहिर होते हैं, एक तो नेचुरली एक इनको अल्लाह पाक ने सलाह दी होती है, और बासा औकात ये कुछ जहाँ दीदा किस्म के लोग होते हैं, और जिसको आप उमूमन कहते हैं आपकी लैंग्वेज में घाट घाट का पानी पिया हुआ, तो इस तरह के भी लोग होते हैं। अलगरस बात चली है महंगाई की, जो हमें हमारे टॉपिक को लिया गया कि भाई ये महंगाई का क्या करें, तो सबसे पहले तो महंगाई हो गई है, इसको कबूल कर लें, इससे भी कुछ चीजें आसान हो जाती है।
क्या बात,
तो आ गई है सर्दी, आ गई है, कबूल कर लें, ताकि अब इससे बचने का इहतमाम कर सके।
मरहबा,
ये है,
वाह वाह क्या बात है, कबूल करने में महंगाई आ गई,
आ गई,
ठीक है,
इसको चीख भी रही है,
जी हाँ जी,
अब इससे, अब ये कि महंगाई आ गई है, अब सिवाय इसके कि आप महंगाई से बचने का तरीका बनाएं,
जी,
और कोई दूसरा रास्ता आपके पास
नहीं,
नहीं है फिलहाल, तो कोई ऐसा दूसरा रास्ता नहीं है। 19-20 का फर्क उमूमन सोसाइटी में आता रहता है, बैंगन 2 रुपये सस्ता हो गया, 2 रुपये महंगा हो गया, केला 4 रुपए सस्ता हो गया तो 4 रुपए महंगा हो गया,
सब 4 रुपए सस्ता।
मैं मिसाल दे रहा हूँ, अब 2-4 रुपए की मिसाल ही दे सकता हूँ,
ठीक है।
ये गरीबों के लिए 2-4 की मिसाल काफी है, अब आप जैसे बड़े लोगों के लिए तो खैर अब हजारों की मिसाल देनी पड़ेगी। तो जनरली तौर पर चीजें हमारे यहाँ बस ये है कि कभी आपको खुश करना होगा मार्केट ने तो 2-4 सस्ता कर देंगे, आप 4 दिन खुश हो जाओगे, फिर थोड़ा बड़ा महंगा कर देंगे तो थोड़ा चीखेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा और सस्ता कर देंगे। अच्छा 10 रुपए का महंगा करना था तो 15 रुपए महंगा करेंगे, चीखेंगे तो 10 कर देंगे, 5 कम कर दिए, करना तो 10 ही था, ठीक है। तो ये एक अंदाज लोगों का है, पाया जाता है माशरे में, इस मुर्दार पे क्या ललचा है, दुनिया देखी वाली है,
अल्लाह बचा।
तो मेरा इसमें ये है हमारे मदनी चैनल के आशिकाने रसूल को कि ये कबूल कर लेना, नंबर 1 कि महंगाई आ चुकी है,
ठीक।
और अब ये कि इसमें मतलब के महंगाई को रोने के बजाय इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है और शायद इसमें हम अपने कई चीजें एक्सपर्टीज जो हमारी जाया हो जाती है, तो इसको रोने के बजाय कि महंगाई आ गई है, इसको अब गौर करें, अब इस महंगाई की तूफान और महंगाई की इस आफत और महंगाई के इस सैलाब से खुद को बचाना कैसे है और
सर्वाइवल कैसे होगा,
सर्वाइवल कैसे होगा।
ठीक हो, कॉल दें भाई।
अतहरत तारीख संवाद से कर रहा हूँ। निगरानी शूरा का प्रोग्राम हर साल की तरह जगमगा रहा है और इस तरह तो बड़ा यूनिक इसका नाम रखा गया वे आप। अल्हम्दुलिल्लाह नेक अमाल का कार्ड जब सलमान मदनी को पेश किया गया तो समझ गए कि इसमें इबादात भी है, मामूलात भी है और अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत भी, तरीकत भी, तिब भी। तो निगरान शुरा को अल्लाह लम्बी जिंदगी दे। ये एक फैमिली कंसल्टेंट के तौर पे ये प्रोग्राम करते हैं और हमारे दिलों को छू जाता है। वेल डन मदनी चैनल, वेल डन थिंक टैंक। अल्लाह ताला हम सबको मदनी चैनल की दावत आम करने की शहादत अता फरमाए।
ये भी एक तरीका है हौसला अफजाई करने का, माशाल्लाह बहुत अल्लाह आपको खुशी से आबाद रखे। हमारी कोशिश यही होती है, बल्कि मेरे पास फीडबैक ही यही है, हम लोग गौर करते हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर, हम उसी तरह के टॉपिक जनरली तौर पर डिस्कस करें, एक लेटर मोड पर भी हों और फैमिली के लिए ज्यादा फ्रूटफुल और यूजफुल हों, फायदेमंद साबित हों। हमें बहुत फायदा होता आपकी कॉलों से और नई जहते भी खुलती है, नई डायमेंशन भी खुलती हैं, नई नई सोचे, नए नए आइडियाज हमारे साथ आपके शेयर होते हैं, डेफिनेटली उसका फायदा है, नुकसान का कोई बाजार पहलू नहीं है
जी। बहुत ये छोटा गरमा जो है रमजान से पहले 200 का 3 किलो मिलता था और अब जो है 200 का 1 किलो मिल रहा है, तो ये अफ्तारी कैसे होगी? फ्रूट नहीं खाएंगे तो अफ्तारी कैसे होगी?
पानी से होगी, खजूर से होगी।
आप बोले हम तो करते हैं पानी से करते हैं।
बुजुर्गों का भी कॉल है और अमीर सुन्नत ने भी चंद मरतबा फरमाया है और बाकायदा ये एक जो माशिया जिन्होंने पढ़ा, इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ा, वो भी इस बात को इंडोर्स करते हैं, जो माशी माहिरीन है, अगर कोई चीज महंगी हो जाए और उसको सस्ता करना चाहते हैं तो उसका तरीका है कि इसको खरीदना छोड़ दें, चीज सस्ती हो जाएगी। अब ये यूनिटी और ये एक तरीकेकार हमारी सोसाइटी में आए कैसे? नहीं खरीदना, जब चीज पड़ी रहेगी तो डेफिनेटली फिर इसको बंदा बेच कर ही जाता है। यानी इसको आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको फ्रूट की एग्जांपल देता हूँ। फ्रूट जब सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा आता है ना महंगा होता है, जब ये शाम को जब ये ख़त्म हो रहा होता है ना, लोग जब घरों की तरफ जा रहे होते, माल बिका नहीं होता तो वो अपने रेट थोड़े से नीचे ले आते हैं। इनको पता है कि अगर ये मैं इसको बचा कर ले जाऊंगा तो ये मेरा फ्रूट जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा। बर्फ वाले को पता हो ना कि ये बर्फ रखने की जगह ही नहीं है मेरे पास, इसको मुझे बेचनी बेचनी है, तो शुरू शुरू में तो ये नफा कमा लेगा, बाद में ये बर्फ बेच कर ही जाएगा, क्योंकि पानी हो जाएगा तो इसका तो कैपिटल ही पानी हो गया। कुछ चीजें जो माशी माहरीन है ये भी हमें बताते हैं। तो अगर कोई ऐसा आपको लगता है, अच्छा हर ये जो, अच्छा ये मैंने जो मिसाल दी ना, अगर इसको आप मेरा ख्याल इसको इतना सीरियस ना लीजिएगा, क्योंकि ये जो फ्रूट के जो ठेले वाले लोग हैं ना, मेरी अपनी सोचिए कि ये अमीर नहीं होते।
अच्छा मैं, मुझे नहीं लगता बहुत अमीर होता।
अच्छा ये फ्रूट ठेले वाले ठेले लगा,
मैं उन्हीं ठेलों की बात कर रहा हूँ फ्रूट के। आपने कभी फ्रूट के ठेले पर वो जो बंदा खड़ा है उसको चेंज देते हुए जेब से पैसे निकालते हुए देखा?
नहीं देखा नहीं है,
लेकिन मैंने देखा है सर।
अच्छा वो असल में मैं आपको अर्ज करूँ, उसके पास वो जो पैसे आपने देखे होंगे, मैंने जेबों पर नजर रखना रखता, ठीक है, तो वैसे ही जेबों पर नजर रखना अच्छी बात नहीं होती। तो अब इसने अभी आप जैसे लोग जाते तो बेचारा मुड़ कर रब निकालेगा ना,
उधर भला करेंगे, मैं बात कर रहा हूँ।
ठीक है, तो होगा ये कि अब इससे जो बेचारे ने जो जेब से पैसे निकाले ना, मिसाल के तौर पर इससे बहुत सारे पैसे निकाले ना, मोटी गड्डी थी, क्या आपको पता है कि इसमें उसे ठेले वाले का नफा कितना है? क्योंकि इसने जो फ्रूट लिया है वो जरूरी कि इससे सारा वो, क्योंकि उसने अगले दिन ये फ्रूट की पेमेंट करनी है, नया फ्रूट लेना है,
ठीक बात,
तो इसका इतना नफा नहीं होता। आप फ्रूट वाले कोई महलों में नहीं रहते, बंगलों में नहीं रहते, कोई आलीशान मकानों में नहीं रहते, ये रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज अपना गुजारा कर रहे होते, तो इनसे महंगे सस्ते का हम क्या बेस करेंगे यार, ठीक है ना। तो असल तो वो जो बाहरों से पीछे से वो आरत वाले होते हैं, इस तरह के मतलब कुछ पीछे से होते हैं, तो इनको पीछे से महंगा आ जाता है। तो अगर ये थोड़ा सा अगर हम लेना बंद करते, खुद ही कहेंगे हुजूर बिकता ही नहीं है, तो वो पीछे से सस्ता करेंगे, भाई नहीं बिक रहा,
सही,
पीछे सस्ता करें, असल में सस्ता होना पीछे से, आगे से नहीं है,
ठीक।
तो ये एक तरीका है,
ठीक है,
कि अगर एक फ्रूट महंगा, एक फल महंगा है, तो थोड़ा सस्ते की तरफ हाथ रख दें या थोड़ा रोक लें, अदरवाइज आप इनको समझाएं और तो बहुत मुश्किल है कि ये कोई काम, ये चीजें कम कर देंगे। और ये बहुत पीछे से एक चेन बनी हुई है, जहां तक हमारे हाथ तो नहीं पहुंच पाते, हमारे हाथ इतने लंबे नहीं है कि वहां कानून के हाथ सुना है लंबे होते हैं, कानून पहुंच के कुछ ना कुछ अपना रास्ता दिखा सकता है, आम लोगों के हाथ लंबे नहीं होते।
अल्लाह रहमत फरमाए। साहब मुझे एक और बात इस कॉल से फील हो रही है, मैं चाह रहा हूँ आप इस पर भी गुफ्तगू फरमाएं। बाज़ औक़ात हम किसी एक चीज को अपनी जरूरत बना लेते हैं, जबकि उसके बगैर भी सर्वाइवल जो है वो मुमकिन होता है, यानी हम अगर उसको माइनस भी रखते हैं तो भी हम चल सकते हैं, निज़ाम हमारा चल सकता है। तो बाज़ औक़ात चीज़ों को एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस जो है वो दे देना, या उनको जो है वो जरूरत के दर्जे में ले आना, ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है फाइनेंशियली तौर पर। क्या
असल में अपने खाने पीने में भी हमें मुतदिल मिजाज रखना चाहिए, किसी चीज का अपनी नफ्स को भी आदि नहीं बनाना चाहिए, वेजिटेबल का खुद को आदि बनाए तो चीजें दुरुस्त हो जाती हैं और आपका जो बजट है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है।
ठीक हो, कॉल लेते।
मैं तो कहता हूँ कि वक्त तो ये है कि हम पानी में रोटी डाल के खा सकते हैं, इसके अलावा और क्या करें?
आपके जो कैफियत है यकीनन मैं आपसे हमदर्दी करूँगा, और है ऐसे घर भी हैं कि जो वाकई परेशान हैं, लेकिन मायूस ना हो, उदास ना हो, हिम्मत में रहें, अल्लाह पाक खैर और आफियत का मामला फरमाएं। मैं आपको खूबसूरत तरीका बताता हूँ, आप खाने से पहले खाने का वजू और खाने के बाद जो खाने का वजू कहलाता है, यानी खाने से पहले हाथ धो लिया करें पोंछों तक और मुंह का अगला हिस्सा धोना होता है, और खाने के बाद भी हाथ धो लिया करें, ठीक है ना, इसका भी बाकायदा तरीक़ेकार है, धो लिया करें। इसकी बरकत मैंने किताब में पढ़ी है कि अल्लाह पाक आपके दस्तरखान में बरकत और वसअत अता फरमा दे।
सुभान,
अब क्या कितना मुश्किल काम बोला मैंने, कहाँ बोला कि आप दो घंटे अपनी जॉब बढ़ा दें, आपको मैं सही बता रहा हूँ। अब ये सुन्नत और आदाब है ना, और इस तरह खाने पीने के ताल्लुक से चीज़ें हैं, यानी घर में खैर व बरकत कैसे आए, घर में आपकी माशी कैफियत कैसे बेहतर हो, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं आपको इसके तरीके बताऊँ। अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको इतनी खूबसूरती के साथ आपको अपनी ज़िंदगी का अंदाज बदलता नज़र आएगा कि आप पानी से क्यों मेरे भाई, इंशाल्लाह आप दूध में रोटी डुबो कर खाओगे, अल्लाह ने चाहा तो, मेरे रब की रहमत से, और अल्लाह पाक आपकी परेशानी दूर कर दे प्यारे हबीब के सदके में, टेंशन ना ले। मैंने क्या कहा कि महंगाई को रोने के बजाय इसको फेस करने और इस पर हावी आ जाने, इस पर गलबा पा जाने का तरीका अख्तियार करें, वरना आपको एक और प्रॉब्लम ये शुरू हो जाएगी, खुदा ना खास्ता आप जहनी तौर पर किसी बीमारी का शिकार हो गए या कोई और जिस्मानी प्रॉब्लम हो गया, फिर इसकी मेडिसिन का क्या करेंगे आप, डॉक्टर का इलाज। तो मेरा आपका मशवरा ये है, आप तमाम जो देखने सुनने वाले हैं, आपकी आमदनी फॉर एग्जांपल 30,000 35,000 के आसपास आपकी अगर कोई सेविंग आमदनी है, अर्निंग है, तो इसको आप कैटेगराइज करें, बजट के साथ बनाएं कि डेली के इतने में, मिसाल के तो बस 30,000 रुपये की अगर आमदनी, तो रोज़ के 1,000 रुपये खर्चा करना होगा। अब घर का किराया भी है, बाज़ों के घर के हर एक के घर का किराया नहीं होता, बाज़ों के घर के किराए भी होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे हैं कि जो दो चार घर के अफराद मिलकर कमा रहे होते, ये उमूमन तो कहते हैं हमारी 20-25,000 रुपए की आमदनी है, मगर यही नहीं कह रहे होते कि हमारे वाले साहब भी 25,000 कमा रहे हैं, हमारे भाई भी 30,000 कमा रहे हैं, यूँ करके हमारा यूँ 70-80,000 रुपये तो घर में आ जाता है। और कुछ मतलब के घरेलू कस्ब के तौर पर हमारे घर की कुछ खवातीन है, वो भी कुछ
कर लेती तो लाख सवा लाख की आमदनी हो जाती है। ये कभी नहीं कि कोई बताने वाले बताते, जनरली अपना ही बताते कि 25-30 हज़ार रुपये की मेरी सैलरी या 25-30 हज़ार रुपये की मेरी आमदनी है। अब मैं तो सिर्फ उन्हीं से बात कर रहा हूँ जिनकी आमदनी है ही इतनी, और कोई ज़रा आमदनी नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, मूड ख़राब करेंगे तब भी 30 के 35 नहीं हो जाएंगे, आपस में दोनों लड़ेंगे तब भी 35 के 40 नहीं हो जाएंगे, आपस में उलझेंगे, परेशान होंगे, सर पर हाथ तक के बैठे हुए होंगे, तो कोई मतलब के नया खजाना आपके हाथ में आ नहीं जाएगा। तो आप ले देखे यही है, अब यही है ना, तो आप बैठ जाए अब यही है। अच्छा, घर वालों को बताया कि ये 8 घंटे 10 घंटे मेहनत मजदूरी कर रहा है, जो बेचारा कमा सकता था कमा रहा है, क्या मतलब के कोई कहाँ से मतलब के नहर की मतलब के दूध की नहरें निकाल कर लाएगा। ये सामने 8-9 बजे 10 बजे घर से निकल रहे हैं, थके आ रहे हैं, 8-9 बजे घर पर आ रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह ने इसके रिस्क मुकद्दर में लिखा है वो ले रहे हैं, और अल्लाह की मर्जी है, जिसके लिए चाहे रिस्क कुशादा कर दे, जिसके चाहे रिस्क कुशादा ना करे। ये तकसीम अल्लाह की, बाजों को उससे अमीर किया, बाजों को गरीब किया है, और ये तकसीम है, अगर ये तकसीम ना होती तो जमीन पर फितना बढ़पा हो जाता। तो एक तो ये कि अपनी इस कैफियत पर अपने रब की रजा पर राजी रहें, औरों के पास क्या है इससे बेनियाज हो जाएं, कनात इख्तियार करें। ठीक है, देखिए ये वो चीज़ें जो आप कहेंगे यार खाली बातें, ये बातें किताबों की लिखी बातें हैं, कुरान और हदीस की बात बातें हैं, तफसीर और शुरुहात की बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, मुसलमानों से कर रहा हूँ, और अपने मतलब हर बात अपने घर की तो मैं आपसे नहीं करूँगा। तो अब ये हो गया, अब बैठ कर इसको बजट लेंगे, भाई रोज़ के हमको 800 रुपये 900 रुपये खर्च करने हैं, 1000 रुपये का बजट ना बनाए रोज़ का, 30 हज़ार की आमदनी है ना, अब 1000 का बजट ना बनाए, अब 800 से 900 रुपये का 800 रुपये का बजट बनाए, क्या रोज़ के 800 रुपये हमने खर्च करने हैं, तो किराए का घर भी फिर इसी तरह का लेना पड़ेगा। ये सब करने के बाद फिर आप देखें कि अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको एक हल्का फुल्का सा अल्लाह ने चाहा तो सुकून भी नसीब होगा, फिर बरकत के वज़ाइफ पढ़े, बिल्कुल इशराक चाश के नवाफिल पढ़ें, आपका रिस्क ना खुले तो मुझे कहिएगा। इसी तरह तुलुए फजर से तुलुए आफ्ताब, यानी सूरत तुलु होने, यानी सहरी का वक्त ख़त्म हुआ और फजर का वक्त ख़त्म हुआ, ठीक है, सहरी का वक्त फजर का वक्त, अभी रमज़ान में इतना मुश्किल नहीं है, इन दोनों टाइमिंग यानी सहरी का वक्त ख़त्म होने से लेकर फजर का वक्त ख़त्म होने तक के दरमियान अल्लाह पाक अपने बंदों में रिस्क तकसीम फरमाता है। अल तरगीब अल तरीब में यह हदीस मौजूद है, आप अमल करें, आपको ना फर्क पड़े तो कहिएगा, फिर इत्तेफाक पैदा करें आपस में, लड़ने की पहली नौसत यह है कि बरकत चली जाती है। अच्छा, आप सिले रहमी करें, जो चाहता है कि अल्लाह पाक उसके रिस्क में बरकत दे, इसकी उम्र में बरकत दे और बुरी मौत से इसको बचाए, उसको चाहिए कि सिले रहमी करे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप सिले रहमी कर रहे हैं क्या, आपके भाई बहन वालिदैन रिश्तेदार ज़िविल अरहाम जो खूनी रिश्ते हैं, क्या इनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं? आप बोले यार उन्होंने ही हमसे बिगाड़ के रखी है, तो आप संवार के ले, यानी सिले रहमी जो है ना ये किसका नाम है, इसको ज़रा समझ लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह किसी दिन टॉपिक पर लेंगे हम इसके, किसका नाम सिले रहमी, इसका नाम नहीं है कि इसने अच्छा किया तो आपने भी अच्छा किया, हमारे शरीयत में कहते हैं इसको अदला बदला, सिले रहमी कहते हैं जो जो आपके साथ जैसे अच्छा नहीं किया ना उसके साथ अच्छा करे, इसको सिले रहमी है। तो आप सिले रहमी करके देखे नहीं रिश्तेदार को ससुर करके दे, फिर आप हमें कहिएगा ना, अब आप कहें कि यार कुछ और बताओ, और जितना कर बताया उतना करें, फिर इंशाल्लाह कुछ और भी बताएंगे आपको।
कॉल लेते हैं इंशाल्लाह जी।
अरे अब ये प्रोग्राम चल रहा है ना महंगाई का ही सर, बिल्कुल महंगाई असल में आवाम की वजह से ही होती है। अभी सही कह रहे थे कि असल में महंगाई अगर कोई चीज महंगी होती है तो आप उसको लेना बंद करते, 4 दिन नहीं लें तो 5वें दिन वो ऑटोमेटिक सस्ती ही हो जाएगी। अभी यहाँ तो अल्लाह माफ करे कि अगर गोश्त लेना है तो नहीं यार 15 दिन का गोश्त एक साथ ही ले लो, कल गोश्त नहीं मिलेगा। फ्रूट लेना है 4 दिन का एक साथ ले लो, कल फ्रूट नहीं मिलेगा। ये आवाम ये तो बिगाड़ती है ना, अभी ठंडे वाले दिन में गोश्त लेने गया ऐसा लगता था जैसे गोश्त फ्री बढ़ता है, आटा फ्री बढ़ रहा है, चिकन फ्री बढ़ रहा है, जैसे कल मिलेगी। तो आवाम की वजह है कि अगर आप थोड़ा बहुत लो गोश्त दूसरे दिन भी आपको मिलेगा ही ना, अब यह एक साथ आप लोगे तो जाहिर बात है महंगाई होगी, हर बंदा महंगाई करेगा।
मैं बिल्कुल आपका ये नुक्ता नज़र भी नाजरीन तक पहुंचा और नुक्ता नज़र किसी हद तक आपका दुरुस्त भी है, क्योंकि मुझे मैं तो नहीं गया, मुझे तो तजर्बा नहीं हुआ, मुशाहिदा नहीं हुआ, लेकिन मुझे कहने वालों ने कहा कि बाजार में खैर तील धरने की जगह नहीं है,
ऐसा ही
इतना बाजारों में मार्केटों में ख़रीदारी पर रश लगा हुआ है, महंगाई है, लोगों के पास पैसे नहीं है, आमदनियाँ नहीं है, गुजारा नहीं हो रहा। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये फिर बाजार में सब तो घूमने के लिए नहीं आए होंगे, मगर एक तबका है जिसके लिए बहुत आजमाइश है, आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूं, और हमारे जो मुखय्यर है हज़रात हैं जिनको अल्लाह ने नवाजा है, उनको चाहिए कि ढूंढ ढूंढ कर ऐसों की कुछ ना कुछ माली मदद कर दें, कम अज कम रमजान पैकेज के तौर पर कैश दे दें, 12% जरूरी ज़कात ही दें यार, अल्लाह ने आपको इतना दिया है, कम अज कम किसी, फॉर एग्जाम्पल आप जो मुझे देखो सुन रहे हैं, लाख रुपया तो आपको एफोर्ड, आप एफोर्ड कर सकते हैं ऐसे ही नफली सदकात में, लाख रुपए एफोर्ड कर सकते हैं, 10,000 रुपए किसी के 10 घरों में पहुंचा दें, उनका रमजान का मामला तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो किसी हद तक बेहतर हो जाएगा, आपका तो लाख रुपया गया ना, क्या बोलते हैं आप, चलें कर लें, लिस्ट बना लें 10 लोगों की, नहीं लाख ज्यादा है 5 कर लें, 50,000 के ये भी ज्यादा है, 10,000 का एक ही कर लो, 10,000 भी ज्यादा है, 5,000 का कोई एक घर पकड़ लें, ये मैं ज़कात के अलावा की बात कर रहा हूँ, ज़कात तो जिनको फर्ज है वो देनी देनी है, मुस्तहकिन को दें, अल्लाह ने चाह गया नहीं, हम एज ए सोशल, अब वो जो मैंने हल निकाला तो होता है कि इंडिविजुअल हल था, फैमिली बैठकर हल निकाले, लेकिन एज ए सोसाइटी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जिनको अल्लाह ने कुछ दिया है नवाजा, हदीस है तिर्मिज़ी की हदीस है कि तेरे माल में ज़कात के अलावा भी हक है, ठीक है ना, तो ज़कात के अलावा भी दें, जो अल्लाह ने आपको जो दिया है, आपको पता है मेरी ज़रूरत से ज़ायद मुझे बहुत कुछ मिला हुआ है, तो वो ज़रूरतमंदों को दे दें, अल्लाह आप, अच्छा ये देने से है कि आपका घटेगा तो है ही नहीं, बढ़ेगा बढ़ेगा, कर्ज का जो कुरान में कहा है कि अल्लाह पाक है कोई जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे, ये कर्ज को जो बयान किया गया है ना कि कर्ज दो तो वापसी है, किसी को आपने तोहफे में नहीं दिया, कर्ज दिया है तो कर्ज का मतलब होता है वापस मिलना है, तो अल्लाह ने कर्ज का लफ्ज अता फरमाया है, है कोई जो अल्लाह को कर्ज दे के तुझे वापस मिलेगा, और तू कर्ज तू मेरी राह में अपनी औकात के मुताबिक खर्च करेगा, मैं तुझे वापस अपनी शान के मुताबिक दूंगा,
अल्लाह अल्लाह
ये कमाल है, अब करके तो देखें फिर कहिए, यानी आपके भी कमी नहीं आएगी, यानी एक एक कैंडल से अगर मैं दूसरी कैंडल जला दूं तो उस कैंडल में उस मोमबत्ती की रोशनी में कम नहीं आई, वो अंधेरी बंद जो थी वो जल गई और दोनों के जलने से रोशनी बढ़ गई, ये करना फार्मूला, ये एज ए सोसाइटी पर्सन, एज ए सोशल पर्सन, ऐसे माशरती जिम्मेदारी के तहत हम सब मिलकर करें इंशाल्लाह।
या मरहबा, सुभान अल्लाह साहब, मैं एक और बात भी कहना चाह रहा हूँ मेरे हुजूर, इसको भी आप दे लें कि बाज़ का बांटने का तो मामूल होता है लेकिन वो बिला तमीज़ और तफरीक जो है वो बट रहा होता है, जैसे हजूम जो भी आया हुआ है वो आएगा ले जाएगा, उस हजूम में भले एक ही घर के 8 अफराद आए हुए हैं तो वो 8 राशन लेकर,
ये तो वो लोग भी गलत करते हैं जो इस तरह के बाकायदा टीम वर्क के साथ इस तरह की चीज़ें करते हैं, उनको भी नहीं करना चाहिए, मतलब मैं लास्ट टाइम मैंने इतवार को बयान किया था, गरीब गरीब का हमदर्द बन जाए तब भी बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे,
सही,
अब गरीब गरीब को ही नहीं पहुंचने दे रहा, यानी कई अमीर हैं जिनको अल्लाह ने दिया है वो गरीबों को बांटने के लिए मार्केट में बाजार में खड़े हैं, हम देने के लिए खड़े हैं, वो आए हैं 200-200, 500-500 को देने के लिए, 1,000-1,000, 1,200 को देने के लिए मार्केट में आए हुए हैं, निकले हुए हैं, लेकिन अब वो गरीबों को देने के लिए निकले, अब गरीब ही गरीब तक नहीं पहुंचने दे रहा, और उसी ने अपने घर में 8-10 ले लिया, मार्केट में बेचकर उसने और कर लिया, या इस तरह की कोई इन्होंने एक माफिया बनाई हुई, तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा रहम करें, ये माशाल्लाह गरीबों का भला करने वाले भी माशरे में, महंगाई के ही हल हैं जो मैंने आपको अर्ज किया है, अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कुरान और हदीस को भी आप पढ़ेंगे तो आपको ज़कात के अलावा नफली सदकात और इसमें भी खूबसूरत अता, यानी लन तनालु बिर्र हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त नेकी को नहीं पा सकते जब तक अल्लाह की राह में वो ना खर्च करो जो तुम्हें ज्यादा पसंद है, तुम्हें ज्यादा पसंदीदा है, तो आप देखिए इस्लाम और दीन की खूबसूरती देखें, और इस्लाम और दीन ने हमें खूबसूरत तरीका दिया है, आज हमारा प्रोग्राम का नाम तरीका, ये तरीकेकार है, इसकी अगर पैसों की मुसावी तकसीम कर दी जाए ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी विथ ड्यू टू शरिया, और जो एक सोसाइटी का एक अंदाज होना चाहिए, अब फिर एक दौर देख लीजिएगा, अमीर अमीर से अमीर होता जाए, गरीब गरीब होता जाए, ये पूरा एक माशी निज़ाम जो है डिसबैलेंस है हमारा, अगर शरीयत का दिया हुआ माशी निज़ाम आ जाए, तरीकेकार आ जाए, और जो इसके अथॉरिटीज हैं अगर वो पैसों को दुरुस्त तकसीम करने और निर्ख को कीमतों को मैनेज करने में अगर कामयाब हो जाए तो ये चीज़ों का हल मौजूद है, मगर मसला यही है कि अब मैं अंधेरे को क्या कोसूं, मैं तो अपने चराग को दुरुस्त करने बैठा हुआ हूँ।
मरहबा, माशाल्लाह, कॉल लेते हैं।
मेरा सवाल ये है, क्या सिर्फ बचत और किफायत शारी पर ही ध्यान देना होगा या कुछ और भी करना होगा?
ये भी ये बुनियादी चीज़ें हैं, बचत और किफायत शारी बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, अगर आप बचत की तरफ जाते हैं फिर खरीदना खुद एक बहुत बड़ी खूबी की बात होती है। बंदा सस्ता खरीदे वो ताजिर ज्यादा कामयाब है जिसकी खरीद अच्छी है, ये मैं आपको बता दूं। जिसको बेचने अच्छा आता है ना वो इतना कामयाब नहीं है, अच्छा कामयाब अच्छा ताजिर हुआ है जिसको खरीदना आता है। जितनी कम कीमत खरीदेगा नफा उसका अपना है, महंगा खरीदेगा फिर फंस जाएगा वो। तो यूं मतलब कि बचत और किफायत शियारी यानी कि बचत वाला मामला, फजूल खर्ची से बचना, ये भी है। अपने किचन का, अपने वॉशरूम का, अपने दीगर चीज़ों का जायजा लें, जो चीज़ें मतलब अननेसेसरी हैं उससे रोकें अपने आप को, और जो कर सकते हैं मैं तो उनको कहता हूँ कि कर सकते हैं, मैं कहता कि अब नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं। उम्मत प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखियारी उम्मत पर थोड़ी आप भी रहमत की नज़र करके अपना थोड़ा बचा कर उन तक पहुँचा दें तभी इंशाल्लाह भला हो जाएगा। ये तो होगा, मतलब है जिनके पास है मतलब करोड़ा करोड़ रुपए खर्च करने वाले भी हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं, यानी यूँ समझिए कि कुछ ऐसे हैं जो शादी पर करोड़ा करोड़ों खर्च कर चुके और किसी के पास चंद लाख भी नहीं है कि अपनी बेटी की शादी कर सके। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, ज़रूरी हर चीज़ आप पर फ़र्ज़ हो, वाजिब हो या बहुत ज़्यादा लाजिम हो, मगर हम जब बारगाह रिसालत में हाजिर, अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में हाजिर हों तो हमारे पास कुछ अर्ज़ करने के लिए हो, या रसूल अल्लाह ये करके आपकी उम्मत के लिए हाजिर हुआ हूँ, मुझको शफात की भीख दे दो।
क्या सदका देने से माल बढ़ता है, निगरान शुरा अगर इनमाई फरमा दे?
बिल्कुल, सदका देने से माल बढ़ता है और उस पर तो आका फरमा दे जो अल्लाह की राह में खर्च करता है उसका माल बढ़ता है, मतलब कि कसम खाकर इरशाद फरमाया कि माल बढ़ता है, मतलब ये तय है। बल्कि मैंने तो खुद अपने जो गरीब और मतलब एक एवरेज फैमिलीज हैं मैंने उनको भी दरख्वास्त की है कि कुछ ना कुछ अपने जेब से निकाल कर दे अल्लाह की राह में।
आपने कहा था एक रुपया सदका करो,
करो
इस जमाने में,
करो, मैंने इस जमाने में भी कहा, इतवार को भी कहा, कुछ अंडा तक दे दो, मुट्ठी पर चावल दे दो, अरे मैं कहता हूँ एक खजूरी दे दो,
अल्लाह अकबर,
फिर देखो अल्लाह पाक आपको इसके नतीजे में कितना अता फरमा।
या मरहबा,
ये हल है
जी,
महंगाई के हल आपका डिस्कस, सिर्फ महंगाई का हल डिस्कस नहीं किया, महंगाई से बचने का तरीका बयान नहीं किया, बरकत का तरीका भी मैंने आपको बयान किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी एक दो चीजें,
उखरवी तैयारी भी है सब, आप देखें यानी कितना मल्टी डायमेंशनल फायदा है इसका जो आप चीजें बता रहे हैं कि एक तो ये काम जो करेंगे तो इससे रिज़्क में बरकत भी होगी और दुनिया में रह करके आखिरत के साथ में क्या है तैयारी भी हो रही है, सुभान अल्लाह।
अब इसको यूं भी देखें कि जो शख्स हर रात में सूरह वाकिया पढ़ेगा उसको कभी फाका ना होगा,
सुभान अल्लाह।
सूरह वाकिया पढ़े, अब ये हमें बता दिया गया है
जी।
अच्छा ये भी आया कि तलाश माश यानी रोजगार की तलाश के लिए सूरह इखलास को बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ 1001 बार अव्वल आखिर 100-100 मरतबा दुरूद शरीफ उरूज माह यानी चांद की पहली से 14वीं तक के जमाने में पढ़ना नहायत मौसर है। या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब 500 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार बाद नमाज ईशा किबला रू बावजू नंगे सर ऐसी जगह के सर और आसमान के दरमियान कोई चीज हाइल ना हो यहाँ तक के सर पर टोपी भी ना हो पढ़ा करें, इंशाल्लाह ताला रिस्क में आपको अल्लाह पाक ने चाहे तो उस अद भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी और इंशाल्लाह कुशादगी भी मिलेगी। मगर सबसे ज्यादा मैं जो शुरू से मैं जोर दे रहा हूँ पुर अमन रहे आप मिजाज अपना मिसाल के तौर पर खो, देखिए मुस्कुराहट तो पैसे से नहीं ना मिलेगी, अखलाक किया तो पैसे से नहीं ना मिलेगा, अब कम से कम कम आमदनी की वजह से, मैं सारी फैमिली को कह रहा हूँ औलाद जो भी आप बैठे हुए हैं कम आमदनी की वजह से आपस में अमन ना बर्बाद करें, अपने घर का सुकून ना बर्बाद करें, मिलकर प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ कोशिश करते हैं। अच्छा एंड में कुछ स्किल्स डेवलप भी की जा सकती है, मैं अपने मर्दों से अर्ज कर रहा हूँ, इस्लामी भाइयों से अर्ज कर रहा हूँ, कुछ स्किल्स डेवलप की जा सकती है, बाज़ औक़ात एक मखसूस आपकी वो आमदनी का जो जरिया है तो आप समझते हैं जो जॉब करते हैं, मैं उनको कह रहा हूँ कि आप अपनी स्केल बढ़ाने पर बहुत जोर देते हैं, यार हमारी स्केल नहीं बढ़ रही, स्किल बढ़ा दे स्केल बढ़ जाएगी, सलाहियतें बढ़ा दे आपकी स्केल बढ़ जाएगी, वरना एवरेज के मुताबिक आपकी इंक्रीमेंट चलती रहेगी, 10%, 12%, 15% इंक्रीमेंट होती रहेगी जो सालाना आपकी मतलब कि वो जो सैलरी बढ़ाने की जो एवरेज होती है। आप अपनी स्किल्स डेवलप करें और अच्छा आप कहें यार इससे तो कुछ फायदा नहीं है, हमने तो देख रहा है कि आपकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह 50,000 है, आपकी 30 है, क्या आपकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह 1,00,000 रुपये है, आपकी 50 है, क्या आपकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह 1.5 से 2 लाख रुपये है जबकि आपकी 1,00,000 रुपये है? इसका मतलब कंपनी पैसे दे रही है ना, लोगों को पैसा मिल रहा है, लोगों को सैलरी इतनी मिल रही है, उनकी सलाहियतों पर, उनकी काबिलियतों पर और उनकी परफॉर्मेंस पर मिल रही होती है, ठीक है ना? तो सिर्फ ऐसे ही नहीं, तो ये भी एक तरीका है, अपनी सलाहियतों को, अपनी काबिलियतों को बेहतर करें, फनून सीखें, महारतें सीखें और इंशाल्लाह ताला ये होती है। जैसे हमारे माशाल्लाह कई ऐसे इस्लामी भाई हैं, हमारे दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन में मैं आपको बयान कर रहा हूँ, इन्होंने दरसे निज़ामी पूरा किया तो इन्होंने तदरीस भी इख्तियार की, ठीक है? अब तदरीस का एक अपना इजारा है, तदरीस की एक अपनी सैलरी है। अच्छा तदरीस की तो तदरीस को 4 घंटे की 5 घंटे की मेरी तदरीस है तो मैं इमामत भी कर लेता हूँ, नमाज तो 5-6 टाइम की मुझे जमा से पढ़नी है, तो इन्होंने इमामत कोर्स किया, इमामत सीखी और इमामत में भी बड़ी सलाहियतें हासिल की, बयान करने के ताल्लुक से, खिरात करने के ताल्लुक से इन्होंने सलाहियतें हासिल की, तो इन्होंने इमामत भी कर ली, तो इनको अब सैलरी मिल रही है इमामत से भी और इनको सैलरी मिल रही है तदरीस से भी। अच्छा अब ये कि इमामत भी हो गई, अब क्या करें, तो इन्होंने बाद वो जो ऑनलाइन हमारा पढ़ाते भी हैं, फैजान ऑनलाइन एकेडमी में बाकायदा पढ़ाते भी हैं
जी।
तो वहां से उनको उनके अपने घंटे में इतने घंटे में पढ़ाऊंगा बाकी नहीं पढ़ाऊंगा, तो वहां से इन्होंने अपनी चीजें की। इसके अलावा और भी 2-4 सलाहियतें इन्होंने और पैदा कर ली इल्मी मैदान में, यानी मैं उनका कह रहा जो 8 से 10 साल से इल्म दीन हासिल किया है, नोट कीजिएगा 8 से 10 साल इल्म दीन हासिल किया मगर इस तरह अपनी सलाहियतों के साथ इल्म दीन हासिल किया, तो आज वो 2 से 3 जगहों पर रिस्पेक्टेबल अंदाज में, कंफर्टेबल अंदाज में रात को सोने के लिए इनको प्रॉपर वक्त मिल रहा है और दिन भर ये जाते हैं, आगे पीछे भी इनका होता है और भी 2-4 जगहों से इनकी जायज और हलाल और इज्जत वाले अंदाज से इनकी आमदनी के जराए बन जाते हैं। और देखें तो ये इनमें कई मिलेंगे जो 1 लाख प्लस हैं, 1.25 लाख प्लस हैं, 1.5 लाख प्लस हैं, बाद इससे भी ज्यादा हैं, बाद इससे थोड़े से कम हैं, मगर ये कैसे हुआ, इन्हीं के साथ का कोई शख्स होगा जो सिर्फ तदरीस ही कर रहा होगा बाकी कुछ सलाहियत नहीं होंगी तो बेचारा क्या करेगा। ये मैं जानता हूं उनको कि जो आए थे जब शुरू किया था उन्होंने सफर तो पैदल थे, बस में थे, आज उनके पास अपनी कारें, अपनी गाड़ियां हैं। इल्मे दीन सीखने वालों के लिए मैं बयान कर रहा हूं, मैं उनको जानता हूं, ठीक है? तो इस तरह मतलब अगर आप अपनी सलाहियतों को बढ़ाएंगे, अपनी काबिलियतों को बढ़ाएंगे दयानतदारी ईमानदारी के साथ, अल्लाह पाक ने चाहा तो दीगर चीजों के साथ इसको भी रखेंगे तो आपकी ये जो माशी परेशानी है इंशाल्लाह इसको भी मिलेगा। इन्हें मैंने दोबारा कह दूं, अंधेरे को कोसने का कोई फायदा नहीं है, आप बत्ती जला लो, अंधेरा दूर करने का तरीका लाइट जलाना है, अंधेरे को कोसने से अंधेरा दूर नहीं होता। आपकी लोड शेडिंग लाइट चली गई, आप बत्ती जलाते हैं रोशनी के लिए, बैठे बैठे अंधेरे को कोसते रहे, अंधेरा जाता नहीं, अंधेरा जाता रहे, अंधेरा नहीं जाएगा,
नहीं जाएगा।
अगर आपको रोशनी चाहिए तो लाइट जला ले, मोमबत्ती जला ले, कैंडल जला ले, चार्जेबल लाइट जला ले, 10 चीजें आपके पास लाइट करने के लिए। अल्लाह पाक करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात।
आमीन आमीन। एक कॉल लेते हैं।
मैं ये पूछना चाहता हूँ रमजान में महंगाई क्यों हो जाती है?
ये दुरुस्त नहीं हो रहा रमजान में महंगाई करने के, जो प्लीप्रेंट महंगाई करते हैं दुरुस्त नहीं करते। मैंने कहा दुनिया में माह रमजान में सस्ता किया जाता है क्योंकि उम्मत के लिए आसानियां की जाती हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान आसानियां, बल्कि मैंने गैर मुस्लिम ममालिक में रमजान पाक में मुसलमानों के लिए चीजों को सस्ता करता देखा है, और ये मेरी बात को कई दुनिया के लोग इंडोर्स करेंगे। खुद अरब दुनिया में मैंने देखा कि बाकायदा सही तौर पर पैकेजेस बनते हैं, रमजान पैकेजेस जो चीजों को सस्ता करते हैं, आम दिनों में वो महंगा होता है। बल्कि सच्ची बात तो है कि रमजान शरीफ के बाद भी अगर वो रमजान पैकेज का अगर कोई चीज पड़ी हुई तो उसी रेट में दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि महंगा कर दिया।
क्या बात?
मैं खुद प्रैक्टिकली मुशाहिदा है मेरा, तजर्बा इसका, तो ये दुरुस्त नहीं हो रहा और इसको बाकायदा रोकने की कोशिश करनी चाहिए जिनका करने का इख्तियार है ताकि लोगों के लिए आसानियां हो। इजाजत दीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
What is the way of this? Chalo seekhe tariqa.